तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। के गंगा जल से बलंगे तन मन अपना धो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। प्यार के सागर हम तेरी लहरों में नाव वो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ।
शांति। किसी एक घने जंगल में एक तपस्वी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या कर रहा था। वो कृष्ण का भगत था, प्रण ले रखा था कि कृष्ण का दर्शन करना ही है। सारे दिन भर तपस्या, सारे दिन भर प्रभु नाम मन ही मन जप। उसी जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया था, भटका हुआ था, थक गया था, कुटिया देखी, प्रवेश किया। उस योगी को देखकर उसने कहा कि आप कौन हो? उस योगी ने उस शिकारी से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूं, शिकार करने आया हूं। आप कौन है? उस योगी को लगा कि ये शायद मेरी भाषा न समझ पाए, इसीलिए इसके साथ इसी की भाषा में बात करता हूं। और उस योगी ने कहा कि मैं भी एक शिकारी हूं, मुझे भी एक शिकार की तलाश है। उस शिकारी ने पूछा कि आपको किस शिकार की तलाश है? उस योगी को लगा कि इसको इसी की भाषा में उत्तर दूं, और उसने कहा मुझे एक ऐसे शिकारी की तलाश, एक शिकार की तलाश है जो मोर मुकुटधारी है, एक ऐसा शिकार जो पीताम्बरधारी है, जिसके पास बांसुरी है। और ये कहते कहते ही वो योगी, वो भगत रोने लगा, हृदय भावनाओं से भर गया, अष्टसात्विक भाव प्रकट हुए, हे प्रभु, हे प्रभु के अष्टसात्विक भाव सुने हैं सबने? कौन से होते हैं? ढूंढना इसको, क्या होता है इन भावों में? अश्रुधारा बहने लगती है, कंपन होता है, रोमांच होता है, त्वचा का रंग बदलता है, स्वरभंग होता है, श्वेत, बहुत सारी बातें हैं उसमें, वो सब कुछ प्रकट होने लगता है। और उसकी वो दशा देखकर वो शिकारी भी हिल जाता है। वो पूछता है, क्या आपको अपना शिकार मिल गया? वो योगी कहता है, नहीं मिला, उसी को तो ढूंढ रहा हूं। वो शिकारी कहता है कि मैं लेके आऊंगा और मैं वापस नहीं लौटूंगा जब तक आपका शिकार आप तक नहीं पहुंचा दूं। और वो शिकारी निकल पड़ता है, चहुओर ढूंढता है कहां मिलेगा ऐसा शिकार जो मोर मुकुटधारी है, जिसके पास में बांसुरी है, जो पीताम्बरधारी है, जिसका चेहरा बड़ा सुंदर है, श्याम वर्ण जो है। बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, नहीं मिलता। शाम को प्रण करता है कि जब तक मुझे वो शिकार ना मिल जाए, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। पूरी रात निकल जाती है, दूसरा दिन होता है, फिर ढूंढता है, सारा दिन बीत जाता है, परंतु मिलता नहीं वो शिकार। फिर रात, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब वो भी व्याकुल हो उठता है, कहाँ है वो? कहानी शायद काल्पनिक ही हो, भक्ति की है, दिखाया है कि श्री कृष्ण को भी रहम आ जाता है, और उसने जो जाल बिछा गया था उसमें वो खुद आके फंस जाता है। और जब श्री कृष्ण उसमें फंस जाते हैं तो उसको लगता है कि बस यही तो है वो शिकार, और उसको पकड़ के अपने कंधों पर लेकर कुटिया की तरफ निकल पड़ता है। और वो जो योगी, वो जो भक्त वहाँ बैठ के तपस्या कर रहा होता है, जब देखता है ये क्या हो रहा है, वो शिकारी कहता है कि आप बाहर आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे शिकार को पकड़ के लाया हूँ। और जब वो भक्त योगी देखता है कि ये तो स्वयं श्री कृष्ण है, आंखों से आंसू बहने लगते और उस शिकारी के चरणों में गिर पड़ता है। तुमने मुझे अपने इष्ट से मिला दिया। तब कहा जाता है कि भगवान अर्थात जो कृष्ण को दिखाया है वो उससे कहते हैं कि ये जो शिकारी है इसकी भावना तेरे से भी ज्यादा है, ये जो शिकारी है इसका जो विरह था वो तुझसे भी ज्यादा है, ये जो शिकारी है इसका जो प्रेम था मेरे लिए वो तुझसे भी ज्यादा है। जो तू न कर पाया वो इसने कर दिया, परंतु तुम भी बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारी भक्ति ही थी शायद इसके वजह से ही मैं इसके जाल में फंस गया। तो भक्ति में दिखाया है भगवान अपने भक्तों के वश में है, वो परम माशुक परम साजन परम प्रेमी जो जो उससे प्यार करता है उसके वश में हो जाता है। परंतु वो प्यार कैसा होना चाहिए उसकी आज हम चर्चा करेंगे। आज प्रेमियों का दिन है, भक्ति पांच प्रकार की होती है, उसमें से एक भक्ति है मधुरा भक्ति जिसमें भगवान पुरुष है और आत्माएं स्त्री, उसके अतिरिक्त इस संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। शांत भक्ति, सखा भक्ति, दास्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और मधुरा भक्ति। इस भक्ति में भगत अपने आप को स्त्री समझता है, गोपी समझता है, मीरा की तरह बन जाता है, राधा की तरह बन जाता है और वो परम प्रेमी हो जाता है। कैसा हो ये प्रेम? मुरलियों में लैला और मजनू की कहानी आती है। संसार भर में बहुत सारे प्रेमी हैं पर मुरली में केवल इन दोनों की ही बात आती है। शायद हर देश में ऐसे एक एक होंगे। कहा जाता है कि मजनू एक बार आंख बंद करके बैठ गया और उसने कहा कि जब तक लैला ना आए मैं आंख ही नहीं खोलूंगा, क्योंकि इस संसार में लैला के अतिरिक्त देखने जैसा कुछ है ही नहीं। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गया, महीने बीत गए, संसार समाज विरोधी था, लैला तो आई ही नहीं। पर कहा गया भगवान आ जाते और मजनू से कहते हैं मजनू देखो मैं हूं। वो कहता है कौन? वो कहता है स्वयं खुदा। वो कहता है गेट लॉस्ट। वो कहता है ये क्या कह रहे हो? भगवान कहता है मैं खुद आया हूं, सारा संसार दुनिया भर के भगत सारे धर्म मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं खुद तेरे पास आया हूं। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहां से, जब तक लैला ना आए तब तक मैं आंख नहीं खोलूंगा। हां अगर तुम आना ही चाहते हो लैला के रूप में आओ तो मैं आंख खोलूंगा। भगवान का भी त्याग कर दिया, ऐसा प्रेम दिखाया है। तो ऐसी प्रेम की बड़ी कहानियां हैं। बाबा से एक संबंध है माशुक का, साजन का। वो माशुक है, वो साजन है, प्रियकर प्रेमी है, वो दूल्हा भी है और फिर बाद में पति भी है। तीनों संबंध है। सलोना साजन मुरलियों में आता है। सलोना अर्थात सुंदर, खूबसूरत, लावण्य युक्त, ऐसा वो साजन है। संसार में अलग अलग प्रकार के प्रेम है, माँ का बेटे से, भाई का बहन से, बच्चों का माँ बाप से, मित्र का प्रेम, पर एक प्रेम प्रेमी का प्रेयसी से। जितना इंटेंसिटी, जितनी पैशन, जितनी तीव्रता इस प्रेम में है उतनी तीव्रता और संसार के किसी भी प्रेम में नहीं है। इसीलिए तो संसार के नवयुवक माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिनके साथ बचपन से रहे, और ये नया व्यक्ति अभी अभी आया है और उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसी तीव्रता है, कैसा वेग है, आवेग है उस प्रेम में। अगर ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही आवेग उस परमात्मा के साथ हो जाए तो अहो भाग्य, अहो सौभाग्य। वही इंटेंसिटी जो अभी ठंडा ठंडा है, वो प्रेम प्रभु की ओर लग जाए तो क्या हो जाए, जीवन ही परिवर्तन हो जाए। क्योंकि वो इस संसार का सबसे सुंदर प्रेमी है, वो सत्य है, संपूर्ण सत्य है, वो शिव है। सुंदरता का वो सागर है, सत्यता का वो सागर है, प्रेम का वो सागर है। उसका प्यार जैसा है, वैसा प्यार इस संसार में और किसी का भी नहीं है। वो द लव डिवाइन कहा जाता है उसे। संसार के सारे प्रेम एक तरफ, उसका प्रेम एक तरफ। द डिवाइन लव इज सुप्रीम अमंगस्ट ऑल अदर लव्स। उसके ऊपर और कोई प्रेम नहीं। क्या हम करें कि उस प्रेम में बंध जाए? फिर दुनिया चाहे कितनी भी कहे कि इस प्रेम को छोड़ दो, परंतु हम उस प्रेम के सागर में अपनी नाव को डुबो बैठे हैं, उस गंगा जल में अपने तन मन धन को धो बैठे हैं। तुम कुछ भी कहो, नहीं छोड़ सकते। ऐसा प्रभु प्रेम हृदय में उत्पन्न हो जाए, जो ये संसार व्यर्थ लगने लगे, असार लगने लगे। इस प्रेम की बड़ी विशेषता है, अविनाशी है, कभी धोखा नहीं मिलता। संसार के जितने प्रेम है, जितने संबंध है, उन सभी संबंधों में कभी ना कभी धोखा अवश्य मिलता है। परंतु ये एकमात्र प्रेम है। क्या ऐसा कोई कह सकता है कि बाबा ने मुझे धोखा दे दिया? कभी नहीं हो सकता। तुम हो कौन, ये बाप जानते हैं। लास्ट संडे के लास्ट संडे मुरली थी, कैसे कैसे सामान दे दिए, कैसी कैसी बातें उसने दे दिए। कल की भी मुरली थी, बाप ने आकर तुमको कितने खजाने दे दिए, ज्ञान दे दिया, योग दे दिया, सेवा, धारणा और समय, पांचों खजाने दे दिए उसने। इतना भरपूर कर दिया। यही वो समय है जब सारे खजाने मिलते हैं, यही वो समय है जब हर घड़ी और हर संकल्प अमूल्य बन जाता है। और उसके इतने प्रेम करने वाले हैं, फिर भी हरेक को अनुभव होता है कि वो मुझसे ही अधिक प्रेम करता है। जैसे गोपियों को दिखाते हैं, महारास लीला हो रही है, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण दिखाते हैं, और उसी में एक दृश्य आ जाता है बीच में कि वो गोपी नहीं, वो एक साधु है, वो एक तपस्वी है जिसने जन्म जन्म से भगवान की साधना की थी और यही मांगा था कि जब तुम आओगे तो अपना साथी मुझे बना लेना, अपनी सखी बना लेना। वो सारे योगी तपस्वी दिखाए हैं, गोपियां बन गए हैं गोकुल में। तो जन जन से जिन्होंने भक्ति की है भगवान की, जन जन से जिन्होंने ढूंढा है भगवान को, वही यहां पर आए हैं। तुम सब पुराने भगत हो, तो ऐसे भगवान भक्तों का वो भगवान, ऐसे आशिकों का वो माशुक अब आया है। अभी अभी मुरली चली थी, एक रूहानी आशिकों की निशानी क्या थी, याद आ रही? चार तीन निशानियां थी ना, प्राप्ति, तृप्ति और अनुभूति। अनुभूति करने वाले। तो ये जो सलोना साजन है, क्या हम करें कि दिल का तार उससे जुड़ जाए? क्या हम करें जिससे सहज सब कुछ हो जाए? कल की मुरली में एक शाम की जो मुरली चली थी, उसमें एक प्रश्न था, सहज साधन क्या है? उत्तर था स्नेह। पुरुषार्थ का सहज साधन क्या है? उत्तर था स्नेह। बाबा ने कहा, स्नेह के सागर में केवल डुबकी नहीं लगाओ, क्या करो, क्या कर दो, डूब जाओ, समा जाओ, खो जाओ। एक है खजानों को जमा करते हैं और नष्ट कर देते हैं, दूसरे है खजानों को जमा करते हैं बढ़ाते हैं, तीसरे है समाने वाले, हम वो समाने वाले हैं। उसके प्यार को हृदय में समा लेना, इतना गहराई से समा लेना कि संसार और संसार के सारे व्यक्ति और संसार के सभी व्यक्तियों के सभी प्यार बहुत छोटे लगने लगे, फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़े, इतना सहज हो जाए। तो ऐसा ये डिवाइन लव है जो उसने हमें आकर दिया है। जितना आश्चर्य है कि वो हरेक का सब कुछ जानता है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाबा के पास किस बात का चार्ट है? हरेक के संकल्प और हर घड़ी के धड़कन का। कितना अच्छा वाक्य है, हर घड़ी की धड़कन और हरेक का हर संकल्प उसके पास है, हर पत्ते को वो जानता है, उसे सब कुछ पता है। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। हम चाहे कितना भी कोशिश करें छिपाए, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए तीसरे प्रकार की महसूसता कौन सी बताई थी आज सुबह? विवेक का खून कर देते हैं। मधुबन में आए हैं सभी तपस्या करने, लक्ष्य रखने हैं, रखना है, जो करने आए हैं वही करें। और परिवर्तन का आधार महसूसता है। ये महसूसता की भट्टी हो, परिवर्तन की भट्टी हो, यहां आके अपनी कमजोरियों को महसूस करना है इन डेप्थ। सबसे गहरी मेरी महसूसता, मेरी कमजोरी कौन सी है? दूसरी महसूसता सुबह की मुरली, व्यक्ति की इच्छा क्या है, भाव क्या है, जो निमित्त है, जो आसपास है, जो ऊपर नीचे है आत्माएं, उनकी उनकी भी कोई विशेष कमजोरी हो सकती है, उसकी भी महसूसता, वो आत्मा भी परवश हो सकती है क्यों इस तरह बिहेव करती है, शायद इस समय मूर्छित है, तकदीर सोई हुई है। ब्राह्मण होने के बाद भी एक ही दिन में सुबह तकदीर जागती है, एक घंटे के बाद सोती है, फिर जागती है, फिर सोती है, फिर जागती है, फिर सोती है, और जब जब सोती है तब विकार आते हैं, जब जब सोती है तब मूर्छा होती है, जब जब सोती है तब विकर्म होते हैं। हम देख रहे हैं किसी को उसके हाथों से कुछ गलत हो रहा है, बाबा ने कहा महसूस करो उसको भी। ये दूसरे नंबर की महसूसता है। तो वो साजन क्या क्या चाहता है हमसे? वो साजन क्या क्या चाहता है कि सजनी कैसी हो? बाबा कहते हैं कि जिससे बहुत प्यार होता है उसकी कोई कमी देखी नहीं जाती है। वो चाहता है कि हम उसके जैसा बन जाए, संपूर्ण पवित्र। कल कहा था शाम को, तुम होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो, हाईएस्ट हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं है संसार में। अगर वो कहता है कि तुम प्योरेस्ट हो, होलीएस्ट हो, तो सुबह से लेकर रात तक क्या मैं होलीएस्ट हूं? क्या ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य है? क्या ऐसी अखंड पवित्रता है? वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी, सुबह की अव्यक्त वाणी, ये तीनों ही पवित्र है। शब्द शब्द पवित्र है, शब्दों में पवित्रता के प्रकंपन हो। जो शब्द निकल रहे हैं, जो बोल निकल रहे हैं, उसमें किसी और दुनिया में ले जाने की गहराई हो, ऐसा लगे कि जन जन की तपस्या बोल रही है। जन जन की इकट्ठा की हुई प्यूरिटी बोल रही है। ऐसा आकर्षण, ऐसा नशा, ऐसा तेज और ऐसा ओज तभी होगा जैसा वो चाहता है वैसा हम बने। तो सलोना साजन चाहता है कि हम में कुछ बातें आ जाए, वो जो डिवाइन लव है उसकी कम से कम 10 खूबियां है, उन्हीं 10 खूबियों में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा वो प्रेम चाहता है। स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर है, अप्रैल 1900 में दिया हुआ, सैन फ्रांसिस्को, द लव डिवाइन, द डिवाइन लव। उसमें उन्होंने कहा है, जो प्रभु प्रेम है वो त्रिकोण है, ट्रायंगल। सबसे पहला ऊपर में जो प्रभु प्रेम है वो कुछ भी मांगता नहीं है, वो भिखारी नहीं है, इट आस्क्स नथिंग, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम हो, इतना ही काफी है। वो कुछ भी नहीं मांगता, नहीं तो ज्ञानियों के शिविर में यहां भक्त छिपे बैठे हैं, उधर की भक्ति तो छोड़ दी, परंतु शिव बाबा की भक्ति चुपके से करते हैं। बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, अर्जी डालते रहते हैं। लास्ट संडे की मुरली, बाबा को कौन से बच्चे पसंद है जो अर्जी डालते रहते, फरियाद करते रहते हैं, घुटने में दर्द है, इस घुटने को ठीक कर दो। पति की बुद्धि का ताला खोल दो, इसको ज्ञान में ला दो, उसको ज्ञान में ला दो, सारे विघ्न को मिटा दो, जमीन दे दो, घर दे दो, नौकरी दे दो, मांगते ही रहते हैं। क्यों मांग रहे हैं, क्या उसे पता नहीं? जबकि आज सुबह की अव्यक्त वाणी वो कह रहा है, हर घड़ी की धड़कन को, हर संकल्प का चार्ट बाबा के पास है, तो उसे मांगने की आवश्यकता है, वो स्वतः ही देगा, अपने आप देगा, कुछ भी मांगना नहीं है। पहला, ट्रायंगल के ऊपर कुछ न मांगना। दूसरा, जो प्रभु प्रेम है, जो डिवाइन लव है, इट नोज नो फियर, उसमें कोई भय ही नहीं है। वो प्रेम जिसमें भय है, वो प्रेम है ही नहीं। मृत्यु कपाती है, हर मनुष्य अपने हृदय में किसी ना किसी प्रकार का भय लिए है। वो भय तभी जाएगा जब चेतना उस परम से एक हो जाएगी, तब तक वो भय रहेगा। कुछ छिन जाने का, कुछ छूट जाने का, कुछ समाप्त हो जाने का, कोई ना कोई भय रहेगा। संपूर्ण अभय अवस्था तभी आएगी जब चेतना उस परम अभय के सागर से एक हो जाए। तब सूर्योदय होगा, तब भय की रात्रि समाप्त होगी, नया सूर्योदय होगा, नया प्रभात। अभी भी मन में भय है, अर्थात हम भगवान से दूर है, बाबा से बहुत दूर है। भट्टी का एक लक्ष्य है उससे सामीप्य बढ़ाना, जो उससे दूर चले गए हैं कहीं, उसके वापस नजदीक आ जाना, फील करना उसको डीपली। एक छोटी सी बच्ची एक स्कूल में पढ़ रही है, बहुत छोटी है, कभी ध्यान नहीं देती पढ़ाई की तरफ। आज ड्राइंग क्लास है, टीचर देख रही है कि आज ये बड़ी ध्यान से ड्राइंग बना रही है। टीचर पूछती है, तुम किसका चित्र बना रही हूं? वो कहती है, गॉड, भगवान का। टीचर कहती, पर भगवान को तो किसी ने नहीं देखा। वो कहती है, अभी देख लेंगे। कितना निश्चय है कि मैं जो बनाऊंगी वही भगवान की तस्वीर है। तो जहां प्रभु प्रेम है वहां भय नहीं। और तीसरा, त्रिकोण का इस तरफ, लव फॉर लव सेक, वो प्रेम केवल प्रेम के लिए प्रेम है। सतयुग की राजधानी मिलेगी, अब उसका भी कोई ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं, प्रेम प्रेम के लिए प्रेम है वो। ये त्रिकोण है प्रभु प्रेम का। तो वो सलोना साजन हमसे चाहता है कि हम भी ऐसे प्रेमी बन जाए जो निरंतर उसके साथ रहे, उसके समीप रहे, उसमें समाये रहे, और उस जैसा पवित्र संसार में कोई नहीं। जो जिस चीज का ध्यान करता है वो उसके जैसा बन जाता है। संसार में कहा जाता है, पति पत्नी जब साथ रहने लगते हैं जब 50-60 साल के हो जाते तो पति पत्नी दोनों एक जैसे दिखने लगते हैं, देखा होगा, थोड़े थोड़े एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, संग का रंग। हम भी यदि लंबा समय भगवान के साथ रहने लगे तो कैसे दिखाई देने लगे, उसके जैसे, इमेजेस ऑफ गॉड। आज सुबह का अनुभव करो, महसूस करो, मैं भगवान के नैनों का नूर हूं, मैं उसके मस्तक का मणि हूं, मैं फरिश्ता हूं अव्यक्त, मैं ब्रह्मा की भुजा हूं। अनुभव करो इन चार चीजों का। तो सबसे पहली बात, हम आज 10 बातें देखेंगे, प्रभु प्रेम में क्या क्या चाहिए या कैसा होना चाहिए। पहला, डिजायरलेसनेस, कोई भी इच्छा नहीं। तुम मिल गए, अब क्या चाहिए, क्या तुमसे मांगू, सब तो तुमने दे दिया है, कहां जाऊं। सारा मनुष्य जीवन खोज थी एक, यहां भटकते थे, वहां भटकते थे, आत्मा की सबसे गहरी प्यास मिलन की प्यास है, सबसे द डीपेस्ट डिजायर, उसको सब कुछ मिल जाए पर मिलन ना हो तो अतृप्त रहती है। परंतु उस मिलन को उसने देह के तल पर ढूंढा, और देह का मिलन होने के बाद भी अतृप्ति ही बनी रही, रादर और विकार जागे, उससे बेचैनी हुई, व्याकुलता आई, अतृप्ति आई, जबकि आत्मा ये भूल ही गई कि अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझा सकती है और आत्मा अनंत है। इस संसार की कोई भी वस्तु आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती, कितना भी पैसा आ जाए, संपत्ति आ जाए, सब अच्छे है, बहुत सारे संबंधी है, बेटे है, बेटी है, सम्मान करते हैं, पत्नी है, पति है, मित्र है, संबंधी है, पैसा है, संपत्ति है, धन, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, पोस्ट, सब कुछ, फिर भी अनंत आत्मा अनंत है। उसको यादि अंत वाली चीजें कभी भी तृप्त नहीं कर सकती, उसकी तो प्यास ही तब बुझती है जब उस एक से मिलन हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात, इच्छा मात्र मविद्या, डिजायरलेसनेस, कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। अगर कुछ देना है तो हे प्रभु मैं तुझसे तुझको मांगता हूं, दोगे? तेरी वस्तुएं नहीं चाहिए, तू चाहिए, उसको पालो सब कुछ मिल जाएगा, उसको छोड़ दो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंग्लिश में कहावत है, गिव योर हार्ट टू गॉड एंड यू गेट एवरीथिंग, अपना हृदय भगवान को दे दो सब मिल जाएगा। गिव योर हार्ट टू द वर्ल्ड एंड यू गेट हार्ट अटैक, अपना दिल दुनिया को दो तो क्या होगा, हृदयघात। विदेशियों को बाबा कहते हैं, तुम्हारा दिल कैसा था, कितने टुकड़े हुए थे, हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां, और बाप ने आके सवारा है तुम्हारे दिल को, वो दिल वाला है। इसलिए जितनी अधिक लौकिक इच्छाएं उतना प्रभु प्रेम कम होता जाएगा। जितनी अधिक इच्छाएं, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, चाहे सेवा के नाम पर ही क्यों ना कर रहे हो, फिर भी उसमें लौकिकता, कारोबार, विस्तार होगा, स्लोगन है आज का, विस्तार नहीं, उसमें प्रभु प्रेम ही खो जाएगा। वो निरागसता जो प्रभु प्रेम में है, डिवाइन लव में है, वो खो जाएगी। इसलिए यहां आए हैं, भट्टी में आए हैं, बाबा से कल मिलन मनाया, संकल्प करके जाना है वहां, जो कारोबार का और संबंधों का और रिश्तों का और मोह का विस्तार कर रखा है, उसको समेट लेना है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। और एक बात फिर कह रहे हैं कि जो भी 2020 चालू हुआ था, किसी ने सोचा था ऐसा कुछ होने वाला है? सोचा था शुरुआत में? जो हुआ अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ। हो सकता है आप जो यहां आए हैं, दिस इज द लास्ट विजिट, हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन की, लौकिक की, या मधुबन में, या समाज की, कि आना जाना ही बंद। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बता ही नहीं सकता क्या क्या हो सकता है। इसलिए यहां जब तक है, इस भूमि में जब तक है, यहां से संकल्प करके जाना है। अब वहां क्या करना है? जाकर सेंटर पर, लौकिक घर में, जॉब में, संबंधों में, दिनचर्या में, ब्रह्मचर्य में क्या करना है? कहां, बाबा ने कहा ना, पहली महसूसता है कमजोरी की, कहां कमजोर पड़ रहा हूं। अमृत वेला कमजोर पड़ रहा है, मुरली चिंतन कमजोरी है। कल कहा ना, एक सुनने वाले है, एक समाने वाले है, ज्ञान का स्रोत मुरली है। कहां कमजोर पड़ रहा हूं? दिनचर्या में कहां कमजोरी है? संबंधों में कहां कड़वाहट है? क्यों मनमुटाव है? क्यों झगड़ा है? क्यों तनाव है? क्यों ब्राह्मण समाज के अंदर ही कलह है? क्यों? यहां मौन में बैठकर चिंतन करना है। डिजायर्स बहुत भटकाते हैं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं। पाली भाषा में शब्द है दुष्पूर, कभी न तृप्त होने वाली है वासनाएं, इनसेशियबल। उनके स्वभाव को, उसकी फितरत को समझना है। है तो इच्छा ही ना, वो कभी नहीं पूर्ण होगी, दुख देगी मुझे। इसके लिए साक्षी और उससे मुक्त होना है। तो सबसे पहली चीज जो उस सलोने साजन को, उस रूहानी माशुक को प्रिय है, वो है इस संसार की कोई वस्तु का कोई आकर्षण नहीं। अभी अभी मुरली चली थी, चार चीजों से न्यारा बनो। कौन से? देह का भान, संबंध, वस्तु, स्वभाव। ये वो चाहता है, ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रहे। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, जब सूर्य आकाश में होता है तो अंधकार आ ही नहीं सकता है, जब रात्रि होती है तब, सूर्य जब डूब जाता है तब अंधकार आता है। तुम अपने मन में निरंतर ज्ञान सूर्य को उदय रखो, उसका उदय निरंतर होता रहे तो कभी भी अंधकार नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही विस्मृति होती है, जैसा ही अंधकार आता है, जैसे ही नींद आती है, तब गलतियां होती है, तब विकर्म होते हैं, और तब फिर पश्चाताप होता है, दिल खाता है, और फिर दिखावा करना पड़ता है। आज सुबह की मुरली, तीसरे नंबर की महसूसता दूसरों के सामने कि मैं योगी हूं, और अंदर से विवेक का खून कर दिया है। दूसरी बात, तीव्र लगन। प्रभु प्रेम में क्या चाहिए? तीव्र लगन, इंटेंस। तीन प्रकार की लगन होती है, एक मंद, एक मध्यम और एक तीव्र। अभी इसी वक्त, जैसे भगत को कैसी लगन होती है, अभी मिलना है उससे, अभी चाहिए वो, कितनी तीव्रता होती है, वैसी तीव्रता। भक्ति मार्ग में कहा जाता है, भगवान तुम्हें तब मिलता है जब तीन चीजें होती है। पहला, जो प्रेम एक लोभी व्यक्ति को धन से है, जो प्रेम एक मां को अपने बच्चे से है, और जो एक कामी पुरुष को देह से है, वो तीनों ही प्रेम एक हो जाए और प्रभु की तरफ चली जाए, तब वो प्रकट होगा, तब तक नहीं। इतनी इंटेंसिटी, इतनी तीव्रता, इतना आवेग। क्या हमारा ऐसा आवेग है कि उसने कहा है बस मुझे करना है? उसने कहा है, अमृत वेला प्रथम श्रीमत है, यहां बैठकर चेक करना है पिछले 6 मास में कितनी बार अमृत वेला मिस किया, और क्यों मिस किया। वो किया मिस इसलिए कि जरूर दिन में कोई विकर्म हुआ था, वो हुआ इसलिए ऐसा हुआ कोई आलस था, कुछ तो था। ब्राह्मण जीवन में यहीं पर यातनाएं हैं, वो है भक्ति मार्ग का गरुड़ पुराण, ये है ब्राह्मणों का गरुड़ पुराण। यहीं पर यातनाएं मिलेगी, यहीं पर जो अमृत वेला मिस हो गया और उसके बाद जो फीलिंग है वो वही सारी यातनाएं जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। वो धर्मराज के दंडे यही है, स्थिति का गिर जाना ही दंड है, अमृत वेला मिस हो जाना ही दंड है, मुरली का रस खत्म हो जाना ही दंड है, खुशी गायब हो जाना ही दंड है, रात रात भर जागते रहना नींद ही नहीं आना दंड है, और कोई दंड नहीं है, यही सारा दंड है और यही मिल रहा है। यात्स देही यात्स जन्मी, अपनी लगन को बढ़ाना है, इंटेंसिटी को बढ़ाना है कि क्या करें जिससे बाबा के लिए प्यार बढ़ जाए। उसने जो जो कहा है पहले तो उसका अध्ययन करो। यहां पर स्पार्क में बहुत सारी किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें अव्यक्त वाणियों की, वो लेके जाना है और व्यक्तिगत अपनी एक भट्टी चालू करनी है, एक कोई भी बुक, टीचर, ब्राह्मण परिवार, सत्यता, ढेर सारी की बुक्स है, कोई एक ले लो और 21 दिन तक बस वो एक ही किताब पढ़ना है, उसी के बारे में सोचते रहना, चिंतन करते रहना, मन भागता है फिर उसको वहीं लाओ। अपनी व्यक्तिगत भट्टी, सामूहिक भट्टी का परिणाम है व्यक्तिगत भट्टी। अगर सामूहिक भट्टी करने के बाद व्यक्तिगत भट्टी चालू नहीं हो रही है तो यहां आना केवल एक कनरस होगा, अल्पकाल की प्राप्ति होगी, 10 दिन यहां का प्रभाव वहां तक चलेगा, 10 दिन के बाद खत्म, फिर जैसे थे जो पहले थे वही रह जाएंगे, ये केवल यादगार रह जाएगी, ज्ञान सरोवर में आए थे, यहां भट्टी की थी, बस परिवर्तन नहीं होगा। पुरुषार्थ की तो एक ही परिभाषा है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। और परिवर्तन तभी आएगा सुबह की अव्यक्त वाणी गहरी महसूसता हो, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। डीप रियलाइजेशन, धक्का लगना चाहिए तब तक परिवर्तन नहीं आता है, शॉक चाहिए तब परिवर्तन आता है, इलेक्ट्रिक शॉक। यहां जब तक है जितना हो सके एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करना है, मौन, आर्य मौन, चुप। मोबाइल जिन्होंने अभी तक केवल साइलेंट और वाइब्रेशन में, वाइब्रेटिंग मोड पर रखा है, उसको स्विच ऑफ कर दो। बैग के अंदर जब भट्टी पूरी होगी उसी दिन उसको ऑन करना है, तब तक बंद। आपस में बातें करते हुए कभी भी तपस्या नहीं हो सकती, तपस्या के लिए तो मूल शर्त ही मौन है। अपना कमरा, हारमोनी हॉल, मुरली क्लास, बाबा का कमरा, डाइनिंग, बस इसके अतिरिक्त कहीं नहीं जाना है। बाउंड्री, सीमा निर्धारित, बस इतना ही। इधर मिलू, इसको मिलू, उस डिपार्टमेंट में जाऊं, इस भाई को मिलू, ये काम है वो काम है, सब एक अलग कर दो। जो संयोजक है, जो नियोजन करने वाले हैं, उनकी बात अलग, बाकी सभी मौन हो जाए, चुप, कंप्लीट साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। उसी साइलेंस में मन की आवाज सुनाई देती है, उसी मौन में अंदर की आवाज सुनाई देती है, उसी मौन में महसूस होगा और वो महसूसता परिवर्तन लाएगी और पता चलेगा कितना दूर हम चले गए भगवान से। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए हैं, जो मिला है वो अनमिला है, मिलते हुए भी अनमिला सा है, ऐसा अनुभव। तो दूसरा, तीव्र लगन। तीसरा, वैराग्य। प्रभु प्रेम अर्थात दो चीजों से वैराग, एक शरीर एक संसार। वैराग की सबसे अच्छी परिभाषा है, वैराग अर्थात शरीर मिट्टी और संसार असार। बस इतनी ही परिभाषा है वैराग की। जब ये शरीर मिट्टी जैसा लगने लगे और ये संसार असार लगने लगे, क्या विस्तार करूं इसमें, जो है उसी को तो समेटना है। लोग पूछते रहते हैं, अभी ये बिजनेस चालू, अभी ये करूं, अभी वो करूं, अभी ऐसा करूं, अभी वैसा करूं, किस लिए कर रहे हैं? बाबा के लिए। पर जिस विधि से कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, वो करते करते ही बाप ही भूल रहा है। जैसे कोई किराए के घर में रहता है, हमेशा इच्छा है कि कब तक किराए के घर में रहे, हमें अपना घर बनाना है। 5 साल लगा देता है अपना घर बनाने में, ताकि ये जो बेचैनी है ये हट जाए, और इन 5 सालों के बाद अपना घर बन जाता है, अपने घर में जाता है। पर बेचैनी तो संस्कार बन चुका है इन 5 सालों में। ये जो भटकना था वो तो स्वभाव बन गया है, उसका क्या करेंगे? फिर नए घर में आने के बाद, अपने घर में आने के बाद भी बेचैनी है, क्योंकि नाउ इट इज नेचर। कल की अव्यक्त वाणी, शाम की शांतिवन, डबल विदेशियों से मुलाकात। लंबे समय कोई कमजोरी हृदय में नहीं रखते हैं, नहीं तो वो संस्कार और नेचर बन जाती है। ये उनकी विशेषता है। कोई भी चीज, कोई भी विकार, कोई भी भाव नंद लंबा समय हृदय में रहा कि धीरे धीरे इट टर्न्स इंटू हैबिट, एंड हैबिट टर्न्स इंटू संस्कार, संस्कार टर्न्स इंटू नेचर। फिर हम छूट नहीं सकते, इट बिकम्स एन एडिक्शन, व्यसन की तरह हो जाता है। फिर समझते हैं ये नहीं करना चाहिए, समझते हैं ये श्रीमद् विरुद्ध है, सब कुछ है, पर विवेक का खून, वैराग, विषय विराग, ईश्वरे अनुराग। समझना इस देह को क्या है, इसमें क्या पाया इस देह के सुख से, इस देह को देखकर, इस देह के स्पर्श से, इस देह के भोग से, इस देह की वासनाओं से, इस देह की इच्छाओं से दुखी तो पाया। उठाना है स्वयं को ऊपर देह से, और ये संसार जितनी बार इस संसार के लोगों पर विश्वास किया, क्या मिला, क्या मिला? हम प्यार क्या मिला? प्रेम बिल्कुल नहीं। किस पर भरोसा करें? इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त हमारा सगा कोई भी नहीं है। सब कौन है? सौतेले। एक पॉलिटिशियन होता है, उसका बेटा कहता है कि मुझे भी आप जैसा राजनेता बनना है, मुझे कुछ सिद्धांत, कुछ टिप्स, कुछ नुक्से नुक्से दो। वो कहता है ठीक है चलो। एक सीढ़ी लगाता है, अपने बेटे को कहता है चढ़ो ऊपर, मैं पकड़ के रखता हूं। वो बेटा ऊपर चढ़ता है बहुत ऊपर, और पिताजी सीढ़ी को हिला देते हैं और वो धड़ाम से नीचे कर कहता है। वो कहता है पिताजी आपने ये क्या कर दिया? वो कहता है दिस इज फर्स्ट चैप्टर, किसी पर भी विश्वास मत करना, सबके संपर्क में आओ ना, ठीक है, सबसे तोड़ निभाना ठीक है, सेवाओं में सब चीजें विश्वास से चलती है संसार में, परंतु अंदर का जो प्यार है सच्चा, वो केवल उस एक से रहे। जैसे वो गांव की स्त्रियां होती है, मटका लेकर चलती है, उसके हैंड्स फ्री रहते हैं, परंतु बातें करते करते जा रही है उसकी सखियों के साथ, पर ध्यान कहां रहता है उसका? सिर के मटके की तरफ, सब कुछ करते हुए। वैसे इस संसार में रहना है, सबके साथ रहना है, परंतु ध्यान कहां? वहां हमारा मन होगा। प्रभु प्रेम दांत के दर्द के जैसा है। डिवाइन लव इज लाइक अ टूथ एक। दांत का दर्द होता है ना, और पेन किलर नहीं खाओ तो क्या होता है? सारा ध्यान उधर ही रहता है। वैसा प्रभु प्रेम हो। तीसरा वैराग। चौथा तीव्र पवित्रता, इंटेंस प्यूरिटी, अतिशय पवित्रता। बाबा को वो आत्माएं बहुत प्रिय है जो बहुत पवित्र है, उनमें कोई गुण नहीं है, उनमें बाकी कोई स्किल्स नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता, उनका कोई चिंतन नहीं है, शायद पढ़ना भी नहीं आता। डायमंड हॉल का वो दृश्य, दूर पीछे कोई माता बैठी है, हृदय में बाबा के लिए इतना प्यार है, इतना प्यार है, अनपढ़ है, लिखना भी नहीं आता, दिखता भी नहीं है स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, पर सबसे ज्यादा अनुभव तो उसी को हो रहा है, जो स्टेज पर घूम रहे हैं उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, और अनुभव किसको हो रहा है, वो जो पीछे है जिसको कुछ नहीं दिख रहा है, क्या है उसके पास, प्यूरिटी है, क्या है उसके पास, निरागसता है, पवित्रता है। इसके लिए इस इंस्टीट्यूशन का आधार प्यूरिटी है, इसको भूलना नहीं है, बाकी सब कुछ चला जाए, प्यूरिटी ना जाए, ब्रह्मचर्य ना जाए, बेसिस है ये। वो यदि चला गया फिर कितना भी बड़ा कोई वक्ता क्यों ना बन जाए, चिंतक क्यों ना बन जाए, सेवाओं में कितना भी विस्तार क्यों ना कर ले, पता नहीं कितने सेंटर्स खुल जाए, परंतु यदि प्यूरिटी में गड़बड़ है, बाप को स्वीकार नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण आता है राम की शरण में, सब कहते हैं इसको ना लो, ये शत्रु की चाल हो सकती है, तो शत्रु का ही भाई। राम कहते हैं नहीं, ये निरागस मन से मेरे पास आया है, और जो जो निर्मल हृदय है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मुझे बहुत प्रिय है। मोहि कपट छल छिद्र, जो दूसरों के दोष छिद्रान्वेषण करते हैं वो मुझे प्रिय नहीं, छल करते हैं वो मुझे प्रिय नहीं, कपट करने वाले मुझे प्रिय नहीं है। जो षड्यंत्र करते रहते हैं, षड्यंत्र पर षड्यंत्र, षड्यंत्र पर षड्यंत्र, जो ईर्ष्या वाले हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश करते रहते हैं, ये मुझसे आगे जा रहा है, इसको नीचे खींचो, कितनी मुरलियां चली है पवित्रता पर। यज्ञ की किताब है एक संपूर्ण पवित्रता, बाबा के सारे महावाक्यों का संकलन है उसमें, बाप समान बनने वाली शिक्षा है, एक दूसरी किताब है जिसमें पवित्रता का एक चैप्टर है, बहुत पावरफुल महावाक्य है उसमें। स्पार्क में एक किताब है मोटी, संपूर्ण पवित्रता। जगदीश भाई की एक किताब है सेलिबसी ब्रह्मचर्य। जिन जिन का ब्रह्मचर्य लड़खड़ा रहा है, स्वप्न में, संकल्प में, संबंध में, सब कुछ छोड़कर बस इसी पे काम करना है, फोकस ओनली ऑन प्यूरिटी। Blessed are the pure in heart, for they shall see the kingdom of God. धन्य है वो जो पवित्र है, वही मेरे प्रभु के राज्य में आएंगे। जीजस से पूछा कि तेरे प्रभु के राज्य में कौन आएगा, बता हे मालिक कौन आएगा, तू बता। वो कहता है Blessed are the pure in heart, जिनका हृदय बहुत ज्यादा स्वच्छ है वो। उसके बाद में अगला, नष्टो मोहा और नष्टो घृणा। प्रभु प्रेम की अगली शर्त क्या है, ना किसी से मोह ना किसी से घृणा, लाइक्स और डिसलाइक्स से परे। अगर किसी एक व्यक्ति से बहुत मोह हो गया तो अपने आप भगवान से मोह कम हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति अच्छा लगने लगा तो हम उसी से शेयर करेंगे, और अगर किसी मनुष्य से शेयर करना चालू किया, फोन से, मोबाइल से, ईमेल से, सोशल मीडिया से, तो भगवान के साथ शेयरिंग अपने आप क्या हो जाएगा, कम। अभी अभी एक घंटा बैठकर अपनी समस्या किसी और को सुनाई, तो बाबा के कमरे में जाके बाबा को सुनाएंगे क्या, अभी तो सुनाया इधर, ये तो चुप ही रहता है, बोलता भी तो नहीं, यूनिलैटरल टॉक। मदद भी कम हो जाएगी अपने आप। और एक दूसरी चीज प्यूरिटी के विषय में याद आ रही है, जो आत्माएं प्योर रहती है उनके जीवन में बहुत सारे विघ्न भी आएंगे, पर हर विघ्न में मदद मिलेगी, बड़ी सूक्ष्म मदद। ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, बहुत विघ्न आएंगे। हम हमेशा सुनाते, एक टीचर बहन ने अपना अनुभव सुनाया था, कहा था कि ये अनुभव मुझे पता नहीं, ये मिरेकल तो नहीं था, मैंने किसी को सुनाया नहीं, शायद ये ब्राह्मण परिवार भी मुझ पर विश्वास न करेंगे। वो बता रही थी कि मैं विदेश गई थी, वहां पर किसी गीता पाठशाला में जाना था, और वो सेंटर की बहन, समर्पित टीचर बहन जा रही थी। सुनसान रास्ता था, झाड़ियां थी नीचे, और एकदम दलदल में फंस गई। उसे पता ही नहीं, दिखाई नहीं वो दलदल है, और दूर तक देखा उसने कोई भी नहीं है कहीं पर भी, और वो धसती जा रही है उसमें, कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं है। और फिर जब उसने देखा कि एकदम असहाय स्थिति है, किसको बुलाऊ, एकदम ही आंखें बंद कर ली, और ऐसी तीव्रता से, ऐसे वेग से बाबा को याद किया। उसने कहा कि ऐसा मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। वो कहने लगी कि बाबा, यदि तुझे मुझसे सेवा लेनी है तो तू ही मेरी रक्षा करना। और वो नीचे 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 जा रही है, पैर तक, कमर तक, पेट तक जा रही है, जा रही है। बस अभी उसको लगा जीवन समाप्त, पूरा वो कीचड़। और फिर एक सेकंड में क्या हुआ पता नहीं, जब उसने आंख खोली तो देखी कि वो बाहर थी, और उसने देखा किसने बचाया, कोई भी नहीं था। वो कहती है कि पता नहीं ये क्या हुआ, वहां पर कोई भी नहीं था, दिस इज श्योर। फिर कहीं से, वहां से निकली, कहीं गांव नल, फिर वो साड़ी वगैरह धोया उसने, पूरा कीचड़ हो गया था उसमें। तो ऐसे ऐसे अनुभव है आत्माओं के। बाकी सब चीजें कम रही चलेगा, मुरली समझ में नहीं आती है चलेगा, पढ़ना नहीं आता है चलेगा, कोई स्किल्स नहीं है, कोई हुनर नहीं है चलेगा, बोलना नहीं आता है, बोलना कला है, भाषण, भाषण का धारणा से कोई संबंध नहीं है। कोई आके अमृत वेले पर ऐसा भाषण करे, ऐसा भाषण करे कि सारी सभा में तालियां, और खुद आज सुबह ही अमृत वेला मिस हुआ था, यह भी हो सकता है। 8 बज के आओ, 8 बजे आओ, 9 बजे अमृत वेला पर बोलो, पॉसिबल है, क्योंकि भाषण तो कला है, उसका धारणा से क्या संबंध। प्यूरिटी तो नष्ट हो मोह और नष्ट हो घृणा। जितना आप अपने मोह का विस्तार करेंगे उतना दुख रहेगा। और घृणा, कोई एक आत्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो आते ही ऐसा लगता है यहां से चले जाओ, बड़ी गहरी घृणा बैठी हुई है। कभी क्रोध आया था और अब घृणा का रूप हो गया है। एंगर था, सेटल्ड एंगर इज हेट्रेट, वो हेट्रेट है, नफरत है, अच्छा ही नहीं लगता। हो सकता है वो 40 साल से ज्ञान में है, 50 साल से ज्ञान में है, बहुत सारी खूबियां है, सब कुछ अच्छा है, पर हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने उसकी एक बात पकड़ के रखी है टाइट, कि ही इज लाइक दैट, ये ऐसा है। यहां सब कुछ बदल रहा है समय के साथ। जो 10 साल पहले घटना हुई थी अभी तक हमारे मन में है, अरे वो व्यक्ति बदल गया, वो चीज चली गई। दादी जानकी कहती थी, रात गई बात गई, क्या करना है, रात चली गई बात चली गई, अब तक क्यों याद रखा है उसको। स्टॉप इट, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, जो हो गया वो हो गया। ये भट्टी को लक्ष्य रखना है कि ये भट्टी अर्थात फुल स्टॉप, इस भट्टी से पहले प्री भट्टी जीवन में जो कुछ हुआ, फुल स्टॉप, अभी नया सब कुछ चालू करना है यहां से। लेट दिस भट्टी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। वो हो सकता है, मौन हो जाओ, एकांत में चले जाओ, फिर वो महसूसता आएगी और फिर परिवर्तन होगा। ऐसे ही परिवर्तन नहीं होता है, डीप रियलाइजेशन इज नीडेड। 2 काम करने हैं, माफ कर देना और माफी मांग लेना, बहुत सिंपल काम है। मन ही मन अभ्यास करना है डेली, अमृत वेला शाम, किसी से माफी मांग लो और किसी को माफ कर दो, सारे हिसाब पूरे। करते जाओ करते जाओ, करते करते अचानक हल्कापन आ जाएगा। अगला, अविनाशी त्याग और तपस्या। ये प्रभु प्रेम है, ये डिवाइन लव है, और रूहानी माशुक चाहता है, वो सलोना साजन चाहता है, उसे त्यागी बच्चे प्रिय है, उसे तपस्वी बच्चे प्रिय है, जिनका जीवन तप से तप रहा है, भोग विलास में डूबे हुए उसे पसंद नहीं है। वैसा ही जीवन जियो जैसे राम ने 14 वर्ष बिताए वन में, तापसवेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। कहां सोता था, क्या खाता था, कैसे पहनता था, कैसी दिनचर्या थी। यदि हमारे जीवन में दिनचर्या में इतना भोग विलास है तो कैसे हम तपस्वी बन पाएंगे। और शरीर की सबसे ज्यादा आसक्ति भोजन में है, सबसे ज्यादा। जब तक यह आसक्ति है तपस्या नहीं हो सकती। मनुष्य की सबसे गहरी आदत भोजन है, उस पर जब तक आघात नहीं किया जाता चेतना हिलती नहीं है। इसलिए भोजन की भी भट्टी करनी है, उसमें एटलीस्ट 2 या 3 बातें हैं। सबसे पहला, जितना हो सके प्राकृतिक अपक्व। दूसरा, 2 ही बता रहे बस, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, हफ्ते में कम से कम 1 बार कंप्लीट उपवास, चेतना हिलेगी। जो नहीं कर सकते 12 से चालू करो, फिर 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा निर्जला, फिर कैसी शक्ति आती है आत्मा में देखना, कैसा हिलने लगता है, भूकंप आता है अंदर, और फिर उस भूकंप की अवस्था में नए संस्कार के बीच डालो। हम तपस्वी हैं, क्या खा रहे हैं। योगी का भोजन धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाएगा। हबच, ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं वो करूं। जिसने जिह्वा को जीत लिया उसने सारी कर्मेंद्रियों को जीत लिया, जिसने रसेंद्रियों को ही नहीं जीता वो जनेंद्रियों को कैसे जीतेंगे। अगला, विरह अग्नि। विरह अग्नि, पैंग्स ऑफ सेपरेशन। क्या उसका अनुभव हो रहा है, ना। तीव्र लगन उठ जाए, ऐसा विरह की अग्नि, जैसे गोपियों की अवस्था थी। उद्धव आया गोपियों को समझाने कि अरे तुम क्या कर रही हो, वो भगवान है। वो कहती है कौन भगवान, कैसा भगवान, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, कृष्ण हमारे साथ यहां खेला था, वहां खेला था, यहां उसने मुरली बजाई थी। वो समझाने लगा उद्धव, 6 मास तक रहा गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने में, आखिर नतमस्तक होकर गिर पड़ा उनके चरणों में, क्योंकि उसके पास ज्ञान की उष्मा थी, गर्मी थी, परंतु प्रेमी गोपियों के पास तो प्रेम की अग्नि थी। कैसी अग्नि हमारे हृदय में है, ऐसा प्रभु प्रेम, ऐसी विरह अग्नि। महाराष्ट्र की एक संत लिखती है, वो किसी वेश्या की पुत्री थी पर भगत थी, हाय लेवल उच्च कोटि की। नको देवराया अंत आता पाहु, प्राणहा सर्वथा जाहु पाहे। ऐसी विरह, बिछो विरह, सेपरेशन, पैंग्स ऑफ सेपरेशन। अमृत वेला रात को सोते समय ऐसा अनुभव हो कि कब उठूं और कब मिलन मनाऊं, अपने आप आंख खुलेगी। प्रभु प्रेम वो अलार्म है जो अमृत वेले तुमको जगाता है, कभी स्लोगन था। किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही आंख खुलती है। रात को सोने को 12 बज रहे हैं फिर भी अपने आप अमृत वेला आंख खुल रही है, कौन उठा रहा है। शरीर थक गया है, भगवान चला रहा है, क्यों हो रहा है, प्रभु प्रेम। अगला, लविंग सरेंडर, प्रेममयी समर्पण। डिवाइन लव अर्थात जिसमें संपूर्ण समर्पण है। 7 प्रकार के समर्पण है, तन मन धन बुद्धि, संस्कार, कर्म और कर्म का परिणाम, सब कुछ समर्पित कर दिया सेवाएं की, पर अब यह इच्छा नहीं कि उसका क्या फल निकलेगा, जो हो ठीक है, राजी तेरी रजा में, होई सोई जो राम रचि राखा, thy will shall be done, ओ लॉर्ड, जैसा तू सोचे, जो ड्रामा में होगा, पर हम प्रयत्न पूर्ण करेंगे, परंतु समर्पण, कर्मों में समर्पण, बोल में समर्पण, अभी अभी गए, भाषण दिया, सेवा की, वाचा की, समर्पित, मुझे पता ही नहीं कौन था वो, होठ हमारे थे, शब्द उसके थे, अपने भाषण से भी, अपनी वाणी से भी डिटैच्ड, उसको भी समर्पित, अपनी सेवाओं को भी समर्पित, अपने संकल्पों को भी समर्पित, कितना हाई लेवल का समर्पण है। कल कहा ना बाबा ने, संसार की आत्माओं को क्या चाहिए, प्रेम, खुशी, शक्ति, तुम क्या दो, मनसा वाचा से कर्मना, उनकी सेवा करो। ब्रह्मा के तीन शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, समर्पण। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। समर्पण का संबंध किसी वस्त्र से नहीं है, ना किसी बैच से, ना किसी स्थान से, और ना ही किसी समारोह से, इन चारों से बहुत कम संबंध है उसका। उसका संबंध मन की स्थिति से है। समर्पण स्थिति का नाम है, ना ही समारोह का। समर्पण बैच का नाम नहीं है, मनो अवस्था का नाम है। उसके बाद में अगला, एक बाप दूसरा ना कोई। रूहानी माशूक चाहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी से भी प्यार मत करना, करोगे तो क्या जलन होती है उसको। बाइबल में लिखा है, आई थाई लॉर्ड थाई गॉड आई एम अ जेलस गॉड, मैं ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त अगर किसी से प्यार किया तो देख लेना उसको बहुत क्या होती है, आग लगती है। एक से ही प्यार। एक बहन जी थे, वो कहते थे कि अपने हृदय में केवल एक चेयर रखना, सोफा मत रखना, सोफा रखोगे तो तीन चार लोग आके बैठ जाएंगे। क्या रखना, चेयर, सिंगल चेयर, ताकि जिसमें केवल बाबा बैठे, तो वैसे वो हृदय में बैठ जाए। लास्ट निश्चय, संपूर्ण निश्चय। दसवां, संपूर्ण निश्चय। इतना निश्चय, इतना निश्चय कि सारा संसार भी विरोध में हो जाए तो भी हमारा निश्चय अडिग रहे। यही सत्य है, जिस मार्ग पर हम निकल पड़े अब वापस नहीं जाएंगे। तू ही सत्य है, तू ही सब कुछ है, तेरे लिए ये जीवन है, मनुष्यों के लिए नहीं है। अब तक मनुष्यों के लिए जीवन समर्पित किया, अब तक अपने शरीर को किसी पुरुष के लिए, किसी स्त्री के लिए समर्पित किया, अब उसके लिए करके देखो। तो उस प्रेम में खो जाना है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, संपूर्ण स्थिरता, संपूर्ण एकाग्रता, एक पल के लिए आंखें बंद कर देंगे, याद करेंगे बाबा ये तुमने क्या कर दिया, कहां पड़े थे संसार में, याद करो उस पल को, वो पहला क्षण जब भगवान का परिचय मिला था, वो दिन, वो घड़ी जब पहली बार सेवा केंद्र में आए थे, वो समय जब पहली बार ब्राह्मण परिवार से मुलाकात हुई थी, वो मधुबन में पहली बार आना, वो बहनों का प्रेम, वो ट्रेन की यात्रा, वो भोजन, वो ट्रेन में सेवा करने का पहला पहला उमंग, वो पहली बार जब मधुबन में कदम रखे, वो शांतिवन, वो पांडव भवन, अपने अतीत में चले जाएंगे। बाबा, वो प्रथम प्रभु मिलन, वो साइट सीन, वो मधुबन में की हुई सेवा, वो सेवा केंद्रों में की हुई सेवाएं, वो गीता पाठशालाएं, वो अनजान गांव जहां कोई भी सेवा केंद्र नहीं था और हम वहां गए, वो कोर्स कराना, वो भाग दौड़, कैसी खुशी थी। ये पहला प्यार था, खो जाएंगे उसके प्यार में, मगन हो जाएंगे। कितने उपकार किए हैं तूने, कहां भोग विलास में फंसे थे, कहां परंपराओं में, अंधश्रद्धा में फंसे थे। चेतना कहां उठ गई है, बुद्धि के कपाट खोले हैं तूने बाबा। कैसे धन्यवाद करूं, कैसे उपकार का बदला चुका हूं, क्या करूं। उस सलोने साजन के प्यार में खो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक ही रो, और बाबा के प्यार में ज्ञान डांस करेंगे। स्टार्ट।
दहलीज पे मेरे दिल की
बहुत धीरे से अनुभव करते हुए,
तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी, मेरे हमदम हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना, मेरे
ग्रुप में कर सकते हैं, दो दो लोग कर सकते हैं।
जीना जीना कैसे जीना,
अनुभव करते करते
जीना तेरे बिना हमदम।
वैलेंटाइन डे है ना, तो डांस तो होता है ना। दहलीज पर कदम रखे हृदय के, सभी करेंगे, नहीं तो वैलेंटाइन नाराज हो जाएगा।
तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी, मेरे हमदम हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
विदेश में वो लोग कहते जीना जीना वाला गीत लगाओ। चालू रखेंगे गीत बजने तक। गोल गोल घूमेंगे।
सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है,
सच्ची सी है ये तारीफ है।
मैंने ज्यादा करी है, भाइयों की तरफ कम है।
जो मैंने करी है
वो कहते हम ही माशूक
है। तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, आसमां मिला जमीन को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
एक मिनट में नीचे बैठ जाएंगे, आंखें बंद, नो मूवमेंट, फुल स्टॉप, कोई हलचल नहीं, एक मिनट में आत्माभिमानी स्थिति, हलचल से सीधा चल। ओम शांति।